नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दो दिनों में ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का संकेत दिया। इसराइल और लेबनान ने वाशिंगटन में प्रारंभिक बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री डॉक्टर जोहान वाडेफुल से मुलाकात की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक करने पर सहमति व्यक्त की। अंडमान सागर में एक अतिभारित ट्रॉलर के पलटने से रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 250 लोग लापता। और शतरंज में उज्बेकिस्तान के जवाखर सिंदारोव ने फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। विश्व चैंपियनशिप में उनका मुकाबला डी गुकेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने ईरान के साथ अगले कुछ दिनों में शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अगले दो दिनों में पाकिस्तान में फिर से शुरू हो सकती है। वार्ता का मुख्य केंद्र दो सप्ताह के युद्ध विराम को बढ़ाना है। युद्ध विराम 21 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका ईरान में परमाणु संवर्धन को समाप्त करना चाहता है, जबकि ईरान प्रतिबंधों में छूट और युद्ध में हुई हानि का मुआवजा चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में लेबनान और इसराइल ने मंगलवार को वाशिंगटन में प्रारंभिक प्रत्यक्ष वार्ता की। यह बैठक 1980 के दशक की शुरुआत के बाद दोनों देशों के बीच पहली प्रत्यक्ष राजनयिक बातचीत है। रिपोर्टों के अनुसार वार्ता सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक मुद्दों पर केंद्रित थी। वार्ता में इसराइल की सैन्य गतिविधि और विवादित क्षेत्रों से लेबनान की वापसी की मांग शामिल है। इसराइल ने समझौते में हिजबुल्ला की सैन्य उपस्थिति पर भी ध्यान देने पर बल दिया। लेबनान के अधिकारियों ने हिजबुल्ला के संबंध में अपने प्रतिनिधिमंडल के बयानों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। वहीं हिजबुल्ला ने वार्ता का विरोध किया है। एक रिपोर्ट।
पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए अमेरिका दो प्रमुख मोर्चों पर बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत कुछ दिनों में फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर इसराइल और लेबनान भी दशकों बाद पहली बार वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका में हो रही बातचीत के केंद्र में सीमा पर तनाव और दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा व्यवस्था है। अमेरिका पश्चिम एशिया में कई तनावग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता के प्रयासों के अंतर्गत दोनों मोर्चों पर मध्यस्थता कर रहा है। हालांकि तत्काल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका ईरान और इसराइल लेबनान के बीच एक साथ चल रही कूटनीतिक वार्ता इस व्यापक संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए नए प्रयासों का संकेत है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमरीकी प्रशासन इस महीने की 20 तारीख से टैरिफ वापसी प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत अमरीका के आयातकों को लगभग 166 अरब अमरीकी डॉलर वापस किए जाएंगे। टैरिफ को फरवरी में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। एक रिपोर्ट।
अमरीकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने कल अदालत में दायर एक याचिका में कहा कि उसने CAPI नामक एक प्रणाली विकसित की है, जो ब्याज सहित एक ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में धन वापसी करेगी। एजेंसी ने शुक्रवार को एक अलग घोषणा में CAPI के लॉन्च की तारीख का खुलासा किया। अब तक 56,000 से अधिक आयातकों ने लगभग 127 अरब अमरीकी डॉलर की कुल राशि की वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। यह प्रणाली चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। लगभग 2.9 अरब अमरीकी डॉलर के वापस भुगतान के लिए अभी भी हस्तचलित प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फरवरी में फैसला सुनाया था कि आपातकालीन स्थिति के लिए बने कानून के अंतर्गत वैश्विक टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयातकों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में धन वापसी के लिए मुकदमा दायर किया है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार 3,30,000 से अधिक आयातकों ने लगभग 5,30,00,000 शिपमेंट पर ये टैरिफ चुकाए थे। इस बीच ट्रंप ने अदालत के फैसले की आलोचना की और एक अलग कानून के तहत नए अस्थायी टैरिफ लागू किए, जिन्हें अदालत में चुनौती दी जा रही है। विश्व दर्पण के लिए मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
अमेरिका की सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में नौका पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए। यह अभियान उन जहाजों पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिनके बारे में ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो लैटिन अमेरिका जल क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। यह अभियान 7 महीने से अधिक समय पहले शुरू हुआ था और ईरान युद्ध में सेना की व्यवस्था के बावजूद जारी है। इस नवीनतम हमले में मरने वालों की संख्या 175 हो गई है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पिछले सप्ताह हुए हमले में बचे एक व्यक्ति की तलाश रोक दी है। सेना ने कहा है कि सभी नौकाएं आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित हैं। खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई है कि वे पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों से गुजर रही थी और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल भी थी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका लैटिन अमरीका में ड्रग कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। श्री ट्रंप ने इन हमलों को अमरीका में ड्रग्स के प्रभाव और अमरीकियों की जान लेने वाले घातक ओवरडोज को रोकने के लिए एक जरूरी कदम बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री डॉक्टर जोहान वाडेफुल से मुलाकात की। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक करने पर सहमति व्यक्त की और महत्वपूर्ण संबंधों के महत्व को दोहराया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने बैठक में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की सराहना की। श्री मिश्री ने कल जर्मनी के विदेश कार्यालय के राज्य सचिव डॉक्टर गेजा एंड्रियास वॉन गियर के साथ भारत जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। चर्चा में व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित और सतत विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मिश्री और डॉ गेजा एंड्रियास वॉन गियर ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर आज अपने 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि चांसलर स्टॉकर के इस दौरे से भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी को और गति मिलेगी। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंडमान सागर में मलेशिया पहुंचने की कोशिश में एक नाव के पलटने से रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 250 लोगों के लापता हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के संयुक्त बयान के अनुसार नाव दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनाफ से रवाना हुई थी। एक रिपोर्ट।
यह नाव कथित तौर पर दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनाफ से रवाना हुई थी और खराब समुद्री हालात, तेज हवाओं और अधिक भीड़ के कारण डूब गई। माना जा रहा है कि यह घटना 9 अप्रैल को हुई, हालांकि पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। अब तक केवल 9 लोगों को बचाया जा सका है। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के अनुसार इन्हें एक गुजरते जहाज ने समुद्र में बहते हुए देखा और बाद में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अधिकारियों का कहना है कि बचाए गए लोगों में से कुछ मानव तस्करी से जुड़े होने के संदेह में है। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार।
स्पेन सरकार ने 5 लाख अवैध प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें औपचारिक रूप से कार्यबल में शामिल किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत 1 साल का नवीकरणीय निवास परमिट दिया जाएगा। कम से कम 5 महीने से रह रहे प्रवासियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। आवेदन कल से शुरू होकर इस जून तक चलेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस कदम को न्यायसंगत और स्पेन के लिए आवश्यक बताया। श्री सांचेज ने कहा कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी वाले देश में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए इन प्रवासियों की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उस राष्ट्र के लिए सही कदम है जिसने अपने कई नागरिकों को पलायन करते देखा है। विपक्षी पीपुल्स पार्टी ने इस योजना की आलोचना करते हुए कहा इससे अवैध प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा। फंकास थिंक टैंक का अनुमान है कि स्पेन में लगभग 8,40,000 अवैध प्रवासी हैं, जिनमें से कई लैटिन अमेरिका से हैं। ये योजना ऐसे समय में आई है जब स्पेन के कई यूरोपीय पड़ोसी देश आप्रवासन पर नियंत्रण कड़ा कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
अमेरिका के उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में आज सुबह एक शक्तिशाली तूफान सुपर टाइफून सिनलाकू के कारण भारी तबाही हुई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सिनलाकू इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। श्रेणी 5 के समकक्ष इस भीषण तूफान ने मारियाना द्वीप समूह के साइपन और टिनियन को प्रभावित किया। वहीं फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान के जावुखेर सिंदरोव ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में जावुखेर सिंदरोव ने नीदरलैंड्स के अनीश गिरी के खिलाफ ड्रॉ खेलकर ओपन वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 2 दिनों में ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का संकेत दिया। इसराइल और लेबनान ने वाशिंगटन में प्रारंभिक बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री डॉक्टर जोहान वाडेफुल से मुलाकात की। अंडमान सागर में एक अति भारी ट्रॉलर के पलटने से रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 250 लोग लापता। और शतरंज में उज्बेकिस्तान के जवाखुल सिंदरोव ने फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। विश्व चैंपियन में उनका मुकाबला दीगू केट से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।